नित्यानंद श्रिया द्वैत गदाधर शिव हरि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म मित्रिला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदशदशी श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज को चरण कमल में श्रद्धा पुष्पांजलि प्रदान करता। तत्पश्चात मेरे सिद्धा गुरुपाद पद्म परिप्राचार्य चतुर्दशी स्वामी श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग पद्म प्रणिपात करता। तत्पश्चात उपस्थित महाराज आदेश दिए हैं महाराज जी का कथा को प्रसंग को बाद में जो प्रसंग उसको श्रवण कराने के लिए। अभी अभी हम लोगों ने श्रवण किया है माता देवती एवं कपिल देव का अंदर में जो विवेचना है, जिस विवेचना में मुख्य रूप में वहां पर माता देवती जब मुक्ति के मार्ग उनको पास में प्रश्न की कपिल देव ने केवल एक ही मार्ग बताए, हे माता जी अगर मुझे प्राप्त करना चाहते हो सदा प्रसंगात मम बीज संपेदो, केवल एक ही रास्ता है मुझे प्राप्त करने का, केवल साधु संघ। साधु संघ को द्वारा ही मेरे को तुम प्राप्त कर सकते हो, ये माता देवती की संवाद रही है। मनु महाराज का तीन बेटी है आकृति देवती और प्रसूति है। अभी ये प्रसूति की कथा आती है, कहते प्रसूति को साथ में दक्ष प्रजापति की शादी हुई, उनसे उनको 16 बेटी हुई। कहते 16 बेटियों में हुए 16 कन्या को, उसमें 13 कन्या को तो हुए धर्म को साथ में उन्होंने शादी करवाया और एक कन्या को हुए अग्निदेव को साथ में और एक कन्या पितरों को साथ में और एक कन्या को हुए शंकर जी को साथ में शादी करवाया जो कि सती थी, लेकिन वह सती की कोई संतान नहीं हुए। वो बीच में युवती अवस्था में ही अपना शरीर को त्याग दे। इतने में विदुर मैत्रेय को प्रश्न करते हैं, कहते क्यों वो बीच में युवती अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग क्यों की। कहते शंकर जी को साथ में उनका ससुर जी की दक्ष प्रजापति कुछ लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, बोले शंकर जी को साथ में दक्ष प्रजापति थी। शंकर तो सत्यम शिवम सुंदर शंकर तो परम वैष्णव है, तो उनको साथ में उनको बहरी क्यों हुई, झगड़ा क्यों हुई। तो उन्होंने सुनाए कि जिस समय ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति को उन्होंने प्रजापति रूप में स्थापन कर दिया, एक समय ये दक्ष प्रजापति की अभिनंदन का स्वागत हो रहा था, स्वागत समारोह हो रहा था। इसी उसी स्वागत समारोह में सारे देवता वहां पर आए हुए थे। अभी दक्ष प्रजापति जिस समय वे सभा को अंदर में प्रवेश किया, जितने देवता लोग थे वो सब खड़े होकर के उनको स्वागत किया। इतने में दक्ष प्रजापति ने देखा सभी ने तो मेरे को स्वागत किया, लेकिन वो स्वागत में केवल दो व्यक्ति खड़े हुए, एक ब्रह्मा और एक शंकर। दक्ष प्रजापति ने सोचा ठीक है, ब्रह्मा मेरे पिता लगते हैं, पितामह लगते हैं, वो खड़े नहीं हुए, लेकिन शंकर तो मेरे दामाद लगता है, जो दामाद वो बेटे के बराबर और मैं पिता हूं, मैं ये जगह सभा में प्रवेश किया तो ये मेरे को सम्मान नहीं किया। और प्रभु का पाई काम बदला है, प्रभुता ऐसे एक वस्तु है, प्रभुता पाने पर जगत में ऐसे कौन सा व्यक्ति जिसके अंदर में मतदा नहीं आ जाए। अभी दत्त प्रजापति को तो बड़ा क्रोध आ गया, खड़े होकर के शंकर जी को वे गाली गलौज करना शुरू कर दिया। कहते इसको तो मैं बेटी देना ही नहीं चाहता था, मेरी इतने सुंदर प्यारी मृगन रहेगी, ये सती है, देखो ये बंदर जैसे आग वाले भूत पिशाच के साथ में रहता है, स्मशान में रहता और इसका बेस का कोई ठीक नहीं, इतने धूर्त इसको मैंने कैसे अपना बेटी को मैंने दे दिया। और ये काली गलौज मुंह में जो आया सो बोलने लग गया। लेकिन तत्वतः शंकर जी कौन है? जो तीसरे नेत्र खोले विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। शंकर परम वैष्णव है, वो महाभागवत है, जो महाभागवत होते हैं उनका लक्षण है सर्वभूतेषु जपस्येत भागवत भावात्मा। जो महाभागवत होते हैं वो स्थूल दर्शन नहीं होती है, हर जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में जो भगवान बैठे हुए वो भगवत दर्शन करते हैं। शंकर जी दक्ष प्रजापति का स्थूल दर्शन नहीं किया, उनके हृदय में जो परमात्मा रूप में भगवान विद्यमान है वो उनको प्रणाम किया। लेकिन ये दक्ष है, किस चीज में दक्ष है? कहते सृष्टि बढ़ाने में, भक्ति में नहीं सृष्टि बढ़ाने में, इसलिए स्थूल दर्शी। इसलिए शंकर जी की महाभागवता को बताओ वो समझ नहीं पाए। जब उन्होंने गाली गलौज किया, गाली गलौज सुनते ही उनका जो वाहन था नंदी, उन्होंने खड़े हो गए। कहते हरि हर निंदा सुन जे काना होए पाप हो घात समाना। हरि हर का वैष्णव का निंदा नहीं सुननी चाहिए, भगवत निंदा नहीं सुननी चाहिए। शंकर जी कुछ नहीं बोल रहे हैं इसलिए बड़बड़ाते जा रहा है। इतने में नंदी जी खड़े होकर के वे बड़े दक्ष प्रजापति को वे बड़े गाली गलौज करना शुरू कर दिया। कहा देखो तेरे बकरी का सिर लग जाएगा, तेरे बकरी का सिर बन जाए। जब उन्होंने ऐसे गाली गलौज किया, इतने में वहां पर भृगु जी थे, भृगु जी खड़े होकर के बोले तू बीच में कौन होता है, यहाँ पर ससुर और दामाद का लड़ाई, तू बीच में खड़े होकर तुम कौन होते हैं दक्ष प्रजापति को बोलने वाले। इतने में भृगु जी खड़े होकर के जितने शंकर जी के भक्तों को गाली गलौज करना शुरू कर दिया। कहते भव प्रताप धरादित्य जेच ताम समान प्रताप पाखंडी नस्तु भविना सत शास्त्र परिपंथी। उनको गाली गलौज किया, कर जितने शंकर जी के भक्त होंगे सब पाखंडी बन जाए और सब गंजा पीने वाले होंगे, अपवित्र शरीर वाले होंगे, उनको नष्टाचार, उनको कोई शौच फौच में कोई ध्यान नहीं रहेगा। जब उन्होंने गाली गलौज किया, इतने में शंकर जी सुनते हुए भी वो कुछ बोले नहीं, चुप रहे, क्योंकि शंकर जी को ये बात पता है सचमुच से मेरा जो भजन करने वाले होंगे सब तामसी गुण वाले होंगे, क्योंकि शंकर जी वो तामसिक गुण में शंकर है, इसलिए बराबर गुण होने पर उस देवता को कोई पूजा नहीं करता है। इसलिए आश्चर्य करके देखो शंकर जी को जो भजन करने वाले जितने राक्षस मिलेंगे। लेकिन शंकर जी का दो स्वरूप है, उनका जो मूल स्वरूप वो सदाशिव है, उनका जो अंश है ये रुद्रशिव। लेकिन जो सदाशिव स्वरूप को जो भजन करते हैं, जब वे सदाशिव स्वरूप में ये जगत को सृष्टि करते हैं, सदाशिव स्वरूप को जो भजन करते हैं वो सारे वैष्णव है, उनको वैष्णव भाव से पूजा करते हैं। जैसे हमारे संप्रदाय में सनातन गोस्वामी हुए, रोज शंकर जी को दर्शन के लिए जाते थे और उनको पास में प्रार्थना क्या करते थे, कहते श्रीमद गोपीश्वरम वंदे शंकरम करुणामयम सर्वक्लेशहरं देवं वृंदारण्यं रतिप्रदं वृंदावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनातन सनातन नारदेभ्यो गोपीश्वर ब्रज विलास युगं कृपस्मे प्रीतिं प्रजस नितरां निरुपाधिकां मे। उनको इस रूप में उनको वंदना करते थे। कहते हे शंकर, कहते श्रीमद गोपीश्वरम वंदे शंकरम करुणामयम, हे गोपीश्वर आप बड़े करुणामय बड़े कृपामय हैं, जिनको सनक सनातन नारदा जिनको उपासना करते हैं, जिनको सिर पर गंदा है, जो चंद्रमा को धारण करके रखे, जो बड़े करुणा बड़े कृपामय हैं, आप कृपा करके ब्रज में जो विलास करते हैं श्री राधे गोविंद राधे कृष्ण के चरण में हमको भक्ति प्रदान कीजिए। इसलिए शंकर जी परम वैष्णव है, वैष्णव नाम जथा शंभू, इसलिए वो आदि गुरु है, एक संप्रदाय का शंकर जी प्रवर्तक है। इसलिए उनको अगर भक्ति रूप में पाने के लिए शंकर जी को कोई उपासना करे, बड़े जल्दी शंकर जी संतुष्ट होकर के उनको प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन कोई रुद्र स्वरूप में उनको भजन करे तो सचमुच से वो सारे पाखंडी बनते हैं। इसलिए शंकर जी सुनते हुए भी कुछ नहीं बोले, चुप रहे। जब चुप रहे इतने में शंकर जी ने देखा, शंकर जी को जो गाली गलौज किया, शंकर जी के जितने चर थे उनको जितने भक्त थे सारे के सारे खड़े हो गए। कहते क्या शंकर जी कुछ बोलते नहीं उसका लाभ उठा रहे हो, जितने शंकर भक्तों को तुमने पाखंडी बना दिया, हम गाली देते हैं, जितने कर्म कांड या ब्राह्मण होंगे कलयुग में सब ठीक मांगने वाले हो जाएंगे और दर दर भटकेंगे। शंकर जी ने देखा ये क्या हो रहा है, ये तो स्वागत समारोह ना ये गाली गलौज के समारोह हो रहा है। इतने में शंकर जी खड़े होकर के अपना गनों को गान को लेकर के शंकर जी चले गए। जब शंकर जी चले गए इतने में दुख प्रजापति तो राग प्रोथित हो गया, मतलब क्या शंकर जी इतने अपमान किया मुझको। इसलिए वो शंकर जी को अपमान करने के लिए वो कल खन में वहां पर यज्ञ प्रारंभ किया। लेकिन वो यज्ञ में वे सभी को तो उन्होंने निमंत्रण दिया, लेकिन एक शंकर जी को ही हुए कोई निमंत्रण नहीं दिया। अभी कंखल में यज्ञ होने पर जितने उनको बहन सब विमान में बैठ करके अपना पतियों के साथ में जितने देवता सब आ रहे हैं कंखल में, इतने में सती ने देखी जितने देवता अपना पत्नियों के साथ में और जितने हमारे बहन अपना दामादों के साथ में सब जा रहे हैं, लेकिन केवल शंकर जी को पास में कोई निमंत्रण नहीं आया। इतने में सती जा करके शंकर जी को बोली, देखो आपको जो ससुर जी कंठल में यज्ञ कर रहे हैं, चलो ना हम भी चलते हैं। शंकर जी ने बोला देखो वहां से कोई निमंत्रण कार्ड नहीं आया है, हम कैसे जाए। सती ने बोली देखो तीन जगह में बिना निमंत्रणों को भी जा सकते हैं, एक में तो पिताजी को घर में, दूसरे में तो गुरु जी को पास में, तीसरे ठाकुर के दरबार में, वहां पर और भगवत कथा में, वहां बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं। इसलिए हम तो पिताजी है, निमंत्रण का क्या जरूरत है। शंकर जी को पता है वहां पर जो यज्ञ किया जा रहे हैं केवल मेरे को अपमान करने के लिए वो यज्ञ कर रहे हैं और कोई उनको उद्देश्य नहीं, वो सिर्फ विघ्न यज्ञ है। अभी सती तो देख देख करके छटपटा रही है, मैं कैसे जाऊं क्योंकि वहां पर बहुत हमारी बहनियां बहनी सब आती होंगी, उनको साथ हमारा मिलन होएगा, कितना दिन को बाद में उनके साथ हमारा मिलन होगा, वो तो छटपटा रही। लेकिन और एक रहस्य की बात था, सती बड़े दिन से शंकर सती को अपना पत्नी रूप में उन्होंने त्याग दिए है। तो जिस समय रावण ने सीता को हरण करके ले गया, लेने का बाद रामचंद्र हासिते हासिते तुम कहां हो, पेड़ को पूछ रहे हैं, हिरण को पूछ रहे हैं, सर्वत्र पूछ रहे हासिते हासिते हासिते। इतने में शंकर जी सती को लेकर के बड़े दूर से उनको परिक्रमा कर रहे थे, जैसे प्रभु का लीला में कोई व्याघात नहीं आए। इतने में सती को मन में एक शंका आ गई, शंकर जी को प्रश्न की, कहते प्रभु आप जो बरात पर परम ब्रह्म राम की कथा आप मुझे सुनाया करते हो, ये क्या वही राम ना ही कोई साधारण कोई काम के व्यक्ति, क्योंकि मेरे को तो पता है सीता जी को रावण ने हरण करके ले गया, लंका में अशोक वाटिका में रखा है, और वो भी छाया सीता, वो भी असली सीता नहीं। अगर ये पराग पर्व परम ब्रह्म राम होंगे, क्या इनको इतना पता नहीं? उनको पत्नी कहाँ चली गई और ये बिलबिला रहे हैं, दुख को मारे पेड़ और हिरणों को प्रश्न कर रहे हैं। शंकर जी ने देखा, देखो इतना दिन बढ़ाते बढ़ाते अभी गुरु जी के ऊपर उसको विश्वास नहीं, शंकर जी के ऊपर विश्वास नहीं है। कह ठीक है, अगर तुमको विश्वास नहीं परीक्षा कर लो। इतने में सती ने सीता का रूप धारण की, धारण करके राम को सामने आ गई। अगर ये प्रभु होंगे तो पहचान लेंगे, अगर राम परम परम राम नहीं होंगे तो वो मेरे को नहीं पहचान पाएंगे। वो बार बार सामने आती है, लेकिन शंकर जी जान बूझ करके उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बार बार आ जाती है। जो जोर जबरदस्ती वो सामने आ गई। इतने में शंकर जी बोले,
शंकर नहीं राम,
राम, राम ने बोले, माता जी शंकर तो उधर चले गए हैं, आप इधर कैसे आ गए हो? इन बच्चों को भी पहचान लिए? इतने में अपना रूप धारण कर ली, करके प्रभु को प्रणाम करके जब खड़ी होती है, देखती है सिया राम मैं सब जगह जानी, लता बताओ सर्वत्र सीताराम सीताराम सीताराम। रामचंद्र ने कहा, देखो सती, शक्ति शक्ति मधोर अभे, कभी सीता मेरे से कभी अलग नहीं है, हम तो एक है। केवल लीला करने के लिए हम दो हुए हैं, सीता कहीं मुझसे अलग नहीं है। सर्वत्र सीताराम सीताराम दर्शन ही। पुनः जब प्रणाम कर खड़ी हुई, देखा कोई नहीं, राम बिलबिलात हुए, हाँ सीते तुम कहाँ हो? अभी सती तो बड़ा घबरा गई। जब शंकर जी को पास में आई, इतने में शंकर जी ने कहा, क्या तुमने परीक्षा की हो? यहाँ पर भी नियम है, अगर हम कुछ गलती करें, गुरु जी को पास में अगर सच सच बोल दे, फिर गुरु जी माफ कर देते। लेकिन सती सीता का रूप बनाई, शंकर जी जो प्रश्न करते हैं, फिर बात को छुपाई, कहते प्रभु आप कभी झूठ बोल सकते हो? शंकर जी ने देखा ये कौन सा रूप में प्रभु ने परखा,
हमने कोई परीक्षा नहीं ली,
परीक्षा
मैंने परीक्षा नहीं ली,
मैंने परीक्षा नहीं ली, लेकिन वो कौन सा रूप में उन्होंने परीक्षा ली? देखा ये मेरी जो आराध्या देवी सीता जी के रूप धारण की, सीता तो शंकर जी का आराध्य आए, तभी से शंकर इनको पत्नी रूप में देखना त्याग दे। अभी पत्नी का स्थान बाम पार्श्व में, अभी उनको सामने आसन देते हैं, तभी से सती बड़ी दुखी है, प्रभु जी मेरे को पत्नी रूप से त्याग दिए। अभी वो कोई बहाना ढूंढती है, ये शरीर को हम कैसे त्याग दे, दूसरे शरीर में मैं शंकर जी की पत्नी बन कर गया। अभी उनको एक बहाना मिल गया, शंकर जी जब किसी तरह से जाने के लिए तैयार नहीं हुए, इतने में तो सती कभी बाहर कभी भीतर कभी बाहर भीतर, ऐसे करते 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 उनको सहन नहीं हुई और लास्ट में अकेली चल पड़ी। कहते आप नहीं चलते तो मैं जा रहा हूँ। शंकर जी को पता है सती जा रही है, ये वापस नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर जो यज्ञ किया जा रहा है केवल मेरे को अपमान करने के लिए। शंकर जी देखा सती अकेली जा रही है, फिर नंदी को अपना दूतों को भेज दिया, कहते का जितना अलंकार सब कुछ लेकर कपड़ा चुपड़ा लेकर के जाओ, माता जी को साथ में जाओ। सती जब कंठल में आई, वहां पर उनका जितने बहनी थी कोई डर मारे बात नहीं कर रही है, क्योंकि अगर बात करते पिता देखते तो बिगड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो यज्ञ किया गया केवल शंकर जी को अपमान के लिए। लेकिन जब वो मैया को पास में गई, मैया तो मैया होती है ना, उनको अपना स्नेहा लाड़ प्यार दी। इतने में सती जाकर के देखा शंकर जी की यहाँ पर यज्ञ भाग है कि है नहीं, देखा सारे देवताओं का यज्ञ भाग है, लेकिन केवल एक शंकर जी का कोई यज्ञ भाग नहीं, कोई आसन नहीं। इतने में तो सती को सहन नहीं हुई, कहती है सीप विहीन यज्ञ है, बड़ा क्रोधित होकर कहा ऐसे जब तक ये शरीर रहेगा तब तक सारा दुनिया मेरे को बोलेंगे मैं किसकी बेटी हूँ, कहते दक्ष प्रजापति की बेटी हूँ, इसलिए ऐसे पिता को मैं पिता बनाना नहीं चाहता हूँ। जो शंकर जो परम भक्त है, सारा दुनिया में जिनको पूजा करते हैं, सीप दो अक्षर सुनते ही जीव का परम मंगल कल्याण हो जाता है। वो शंकर जी का अपमान, इतना बड़ा वैष्णव का अपमान, इतने में वहीं बैठ करके अपना योग समाधि को धरा, अपना शरीर से जोगाद्रि को प्रकट करते हुए वहीं पर अपना शरीर को त्याग देना। त्याग देते ही शंकर जी का जितने भक्त लोग थे, देखा जब हमारा माता जी ही अपना शरीर को त्याग दे दी, वे लोग तो दौड़ दौड़ करके आए और शंकर जी को बोले, कहे सती ने आप तो अपमान को सहन नहीं कर पाई, अपना शरीर को त्याग दे दी। शंकर सुनते ही बड़ा क्रोध उनका आया, इतने में अपना जटा से एक केस को उखाड़ कर नीचे पटक दिया। पटकते ही विशाल एक वीर भद्र प्रकट हो गया। कहते प्रभु क्या आदेश है, कहते जाओ ये दक्ष प्रजापति का यज्ञ को ध्वंस कर दो। अभी वीरभद्र अपना शंकर अपना गण को लेकर गए, पहले तो जाकर के दक्ष प्रजापति सिर को पकड़ा और उसको सिर को काट करके यज्ञ में उन्होंने स्वाहा कर दिया। और वहां पर हमारे भृगु ऐसे ताली हिला रहा था, हंस दाढ़ी कोई दाढ़ी कोई हंस रहा था, इतने उनको दाढ़ी को पकड़ करके उनको उखाड़ दिए। कहते शंकर जी का अपमान, किसी संतों की अपमान तुम कर रहा था। इतने में देखा जो त्रष्टा ऋषि था वो मोच को हिला रहा था, कहते वैष्णव का अपमान कर रहा था, उनको मोच को काट दिए। और भूषारण ने वो आंख दिखा रहा था, कितना अच्छा है, उनको आंख निकाल लिया। और भगदत्त ने दांत निकाल निकाल कर हंस रहा था, उनको दांत को तोड़ दिए। और यज्ञों को ध्वंस विध्वंस करके और जितने देवता वहां पर थे सब डर के मारे जी जान लेकर वहां से भाग गए। अभी ध्वंस हो गया यज्ञ और वीरभद्र आ गया। इतने में सारे देवता ब्रह्मा जी के पास में गए, सब खबर सुनाए। फिर ब्रह्मा जी आए शंकर जी के पास में, जब शंकर जी के पास में आए उसी समय ये कुबेर एक देवता था जो कि उनको पंखा चला रहा था। कभी कुबेर वहां पर पंखा भी खिला रहा था, उनको पंखा कर रहा था कुबेर। कहते कुबेर इनका पूर्व चरित्र आता है। कहते कुबेर पहला जन्म में एक ब्राह्मण था, बड़ा गरीब ब्राह्मण। एक दिन वो चोरी करने के लिए गया, उनको कुछ मिला नहीं। एक जंगल में प्रवेश किया तो देखा एक मंदिर है, और मंदिर को अंदर में प्रवेश किया तो दिखा नहीं, अंधकार रात था। इतने में अपना कपड़े को, वो था कार्तिक महीना, वो अपना कपड़े में आग लगा करके उन्होंने जलाया तो देखा शंकर जी का मंदिर। शंकर तो भोले बाबा है, उनको ये शंकर जी ने इसी भाव से ग्रहण किया, मानो मेरे को ये आरती उतरा। देखा ये मंदिर में कुछ है कि नहीं, देखा शंकर शिवलिंग के ऊपर में एक घंटा लटका हुआ है, सोचा अगर इसको ले जाए तो कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। हाथ बढ़ाया तो हाथ ही नहीं गया। इतने में शंकर शिवलिंग के ऊपर खड़ा हो गया। खड़े होकर उसको उतारते ही शंकर तो संतुष्ट हो गए। तृप्तम अस्मि वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि, मैं संतुष्ट हूँ वर चाहो। कहते कोई तो बेल पता देकर मेरे को ठुकरा देता है, कोई तो बेल दे करके मेरे सिर के ऊपर फूल देकर मेरे को ठुकरा देता है, लेकिन आज तो तुम पूरा के पूरा तुमने मेरे को दे दिया है। इसे शंकर जी संतुष्ट हो गए, कहते वर मांगो। लेकिन ब्राह्मण अपना गलती को समझ गया, मैंने बड़ा गलती किया है। शंकर जी चरण में उन्होंने लेट गया। कहते प्रभु ये गरीब ही मेरे को इतने बुरे कर्म कराया, मेरा अपराध को माफ कर दीजिए प्रभु। कहते तुम वर मांगो, कहते प्रभु आपका चरण में भक्ति दो। शंकर उनको स्वयं वरदान दिया, कोई चिंता की बात नहीं, अगले जीवन में तुम धन कुबेर बनोगे, इसलिए सारे धन तुम ही मालिक बनोगे। इसलिए उनका पुत्र शंकर जी का जो बगीचा था नाव कुबेर और मुनिगिरी, ये दोनों को शंकर जी को बगीचा में उन्होंने रक्षक रूप में भेजा। जब नाव जा रहे थे तभी उन्होंने अभिशाप दिया था, इसलिए अभी उन्होंने शंकर जी को पास में जाकर प्रार्थना किया। शंकर तो भोले बाबा है, बड़े दयालु बड़े कृपाल हुए। फिर शंकर जी आकर के यज्ञ को उन्होंने पूर्णाहुति दिया और बकरी को सिर, उनका सिर पे बकरी को सिर उन्होंने लगा दिया। फिर उन्होंने यज्ञों की पूर्णाहुति किया है, ऐसे ही हुए और यज्ञ को पूर्णाहुति किया। ये गया देवहूति आकुति देवहूति प्रसूति कथा है। इसलिए मनु महाराज का तीन बेटे और तीन बेटी और दो बेटे हैं। कहते दो बेटे में एक प्रिय व्रत और एक उठान पाल है। इसलिए ये जो शंकर जी है ये परम वैष्णव है शंकर जी। इसलिए अगर शंकर जी का कृपा हो भगवान का चरण में भगवत भक्ति को ये शंकर जी देने वाले, इसलिए आप लोग भी शंकर जी को भगवत बुद्धि से भगवान का बुद्धि से पूजा नहीं करके शंकर जी को अगर हम गुरु रूप में उनको उपासना करते हैं फिर शंकर जी की कृपा के द्वारा हमको भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। हम यही बोल करके हमारे राधे से यही बंद करो, हम यही बोल करके अपना पानी को विराम कर रहा हूँ।
कृष्णदास एक मिनट
बोलिए। श्री वृंदावन की हरिनाथ की जय। जय जय श्री कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद
सनातन गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत का मंथन करके ये सब भक्ति का तारतम्य, भक्ति किसको कहते हैं, भक्ति का तारतम्य क्या है, इस पर विचार किया। उन्होंने भक्तों को पांच भागों में बांटा भक्ति के तारतम्य से। जो जितना ही अधिक भक्ति करता है, सेवा करता है, भजन माने ही सेवा, भज धातु सेवा, तो ऐसे भक्तों का भक्ति सेवा के तारतम्य से उनको पांच भागों में बांटा। ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेम पर भक्त और प्रेमातुर भक्त। ज्ञानी भक्त, ज्ञानी दो प्रकार के होते हैं, एक ब्रह्मवादी अद्वैतवादी, जो ये कहते हैं कि सभी ब्रह्म ही ब्रह्म है, जीव मात्र ही ब्रह्म है, सभी ब्रह्म है और ब्रह्म में मिल जाएंगे, कोई भी ब्रह्म में मिलता नहीं है, पानी में पानी भी नहीं मिलता, एक ग्लास पानी पूरा है और उस पर एक ग्लास और पानी ढाल दो भरे हुए ग्लास में, तो दोनों मिलेगा कि नहीं, वो पानी गिर जाएगा, मिला कहां, हम देख नहीं पा रहे। एक लोटा समुद्र में फेंक दो, लीन तो हो गया लोटा, क्या पानी बन गया? इसलिए कोई ब्रह्म में मिल नहीं सकता, यह भ्रामक विचार है। तो मैं कह रहा था कि एक प्रकार के ज्ञानी ये हैं, जो ब्रह्म ही है, मैं हूं, सभी ब्रह्म हैं, उनके लिए जीव मात्र ही, पशु पक्षी कीट पतंग सभी ब्रह्म हैं। और दूसरे ये ऐसा नहीं, हम ब्रह्म के दास हैं, कृष्ण ही पर ब्रह्म है, मैं उनका दास, यह भाव। प्रहलाद महाराज ये ज्ञानी भक्त हैं, भक्त हैं। भीष्म पितामह जी ये ज्ञानी भक्त हैं, जम महाराज जी ये सब ज्ञानी भक्त हैं, सुखदेव गोस्वामी भी अपने प्रथम जीवन में ज्ञानी, दूसरे जीवन में ज्ञानी भक्त। भक्ति है वो सर्वत्र अपने प्रभु को देखते हैं, कहम नहीं उनका प्रभु है, ऐसा कोई स्थान नहीं है, और भगवान की भक्ति करते हैं। भीष्म पितामह जी कैसे ज्ञानी भक्त हैं, प्रहलाद महाराज जी का तो आप लोग जानते हैं, जिसके लिए नृसिंह भगवान खुद आए। अभी नृसिंह चरित्र हुआ नहीं, कल होगा तो ये बतलाएंगे। अम्बरीश महाराज जी का जीवन चरित्र बतलाएंगे और जितना ये सब जो श्रीमद् भागवत में है संक्षेप में, उन सब पर विचार करके हम गोपी प्रेम पर चलेंगे। गोपी प्रेम क्या है तो ये भूमिका भी बंद रहे। तो ज्ञानी भक्त प्रहलाद महाराज जी, भीष्म पितामह इत्यादि हैं। भीष्म पितामह जी कैसे भक्त हैं ये समझो, सर्वत्र अपने प्रभु को देखते हैं, बाण भी चलाते हैं, देखते हैं कि हमारे प्रभु को ये बाण क्या ग्रहण करेगा, छू नहीं सकता है। हमारे प्रभु सच्चिदानंद में है, हम जो चला रहे हैं बाण ये तो पार्थिव बाण है, लौकिक, ये उनको छू नहीं सकता है, इसलिए बाण मार रहे। उनके संबंध में एक कथा है, बड़ी रोचक भी है। महाभारत युद्ध आरंभ हो गया, 10 दिन तक भीष्म पितामह जी ऐसे लड़े कि कितनी सेनाएं नष्ट कर दी। दुर्योधन बोला जी पितामह जी आप ऊपर से तो हमारे तरफ से लड़ते हैं किंतु पांडवों की भलाई चाहते हैं, इसलिए पांडवों को आपने किसी को भी नहीं मारा, तो आपने युद्ध क्या किया मेरे तरफ से, पांचों में से एक सभी लोग तो जीवित हैं। अच्छा एक बात करो, तुम हमारे ऊपर में शंका करते हो, यह शंका ठीक नहीं है। तुम कल रात में जबकि मैं ध्यानस्थ हूं, भगवान का ध्यान कर रहा हूं, उस समय तुम अपनी पत्नी को लेकर के आना, क्या नाम था, भानुमति पत्नी को ले आना और उसको मैं वरदान दे दूंगा जो तुम अखंड पतिव्रता हो, सौभाग्यवती हो, फिर दुर्योधन मरेगा नहीं, तुम उसको ले आओ। दूसरे दिन जही युद्ध समाप्त हुआ रात में, अब बड़ी भयंकर वर्षा, मूसलाधार वर्षा होने लगी और आंधी भी चलने लगी। दुर्योधन ने आज क्या है, कल चलेंगे हम, गया नहीं। और कृष्ण ने कहा सखी द्रौपदी को, सखी तैयार हो जाओ, विभीषण पितामह के यहां चलना है। और वर्षा में छत्र धारण करके रथ पर बैठा करके उड़ के वहां तक ले आए 12 बजे रात में, और उस समय वो ध्यानस्थ थे। द्रौपदी को कहा जी घूंघट लगा करके जाना जिसे पहले पहचान न सके, तो घूंघट को नीचा कर दिया, उनके पास में पहुंच गई और उनको प्रणाम किया, कुछ ऐसा साउंड किया सब जिसे उनका ध्यान भंग हो गया। अरे तू आ गई, क्या ना भानुमती तू आ गई, अखंड सौभाग्यवती हो। तो द्रौपदी जी ने घूंघट उठा लिए और उठा करके भीष्म पितामह, अरे द्रौपदी तू कैसे आई, तुमको कोई लाने वाला जरूर है, कौन है कहाँ है, तो बाहर में खड़ा है। तो कृष्ण आए, देखिए कृष्ण के प्रति कैसी भक्ति है, इसलिए ज्ञानी भक्त माने वैसा ज्ञानी भक्त जैसा भी ब्रह्म है मैं भी ब्रह्म हूं जैसा नहीं, भगवान के प्रति उनकी भक्ति है और भगवान को उनकी बात मानना पड़ता है, ऐसे ज्ञानी भक्त हैं। किंतु इन ज्ञानी भक्तों को से भी शुद्ध भक्त, अम्बरीश महाराज जी की कथा कल परसों आएगी ना, अम्बरीश के सुन लीजिए कैसे एक ब्रह्म ऋषि दुर्भाषा जैसे व्यक्ति जो कि उन पर कृत्या राक्षसी को लेकर अभी शपथ दे इसको अभी जला दे, और भगवान का चक्र उनकी रक्षा के लिए उसको जला दिया और उनके दुर्भाषा के पीछे दौड़ा और वो भागे सारे ब्रह्मांड में घूम करके अंत में भगवान के पास में गए। उन्होंने कहा जी मैं रक्षा नहीं कर सकता, यदि कांटा पैर में यदि गड़ता है तो सिर से नहीं निकलता। भगवान के भक्त लोग तो उनके पैर हैं, तो काटा उनके चरणों में अपराध हुआ तो ये हम अपराध नहीं क्षमा कर सकते, जाओ अम्बरीश के हैं जाओ। अम्बरीश एक वर्ष तक उनके लिए भोजन नहीं किया, खड़े रहे। जब वो आए तब फिर उनको खिला करके और उनका सब अपराध क्षमा कर। दुर्वासा जी बोले, ओहो अनंत दासा नाम महत्तम अद्यमे, आज मैंने महात्मा महात्मा देखा। भगवान के भक्तों की महिमा कितनी बड़ी है। कभी कभी ऐसा लगता है ये चक्र एक वर्ष तक उनके पीछे चला और मारा क्यों नहीं, नहीं इसका कारण था, अम्बरीश तक प्रतीक्षा कर रहे थे और बार बार प्रार्थना कर। और दूसरी बात, वो भी अभक्त नहीं है, भक्तों की महिमा दिखलाने के लिए ऐसा करते हैं। नहीं तो कुंती को वरदान दिया, राधा जी को वरदान दिया, तुम जो कुछ बनाएगी रसोई वो अमृत के तुल्य होगी जब कृष्ण की सेवा करने के लिए जाती। इसलिए दुर्वासा जी भक्तों की महिमा चारों तरफ में दिखलाते हैं। इसलिए अम्बरीश महाराज ऐसे शुद्ध भक्त हैं, प्रेमी भक्त। हनुमान जी की तो हमने बात बतलाई है, दो एक बातें और उनके संबंध में बतलाऊं। कैसे ये हनुमान जी समस्त इंद्रियों से, तन से, मन से, वचन से, भावना से किस प्रकार से अपने प्रभु राम की सेवा करते हैं, ये सेवा ही भक्ति है। इसलिए और लोगों की अपेक्षा हनुमान जी श्रेष्ठ हैं। एक समय लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सीता जी चारों मिलकर के मीटिंग की और उसमें ये विचार किया कि हनुमान दिन रात सब समय सेवा करता है और हमें कोई सेवा ही नहीं प्रदान करता, हम लोग निठल्ले बैठे रहते हैं और दिन और रात यही पद संवाहन करता है, खिलाता है, सब कुछ काम करता है और हम लोग दिन और रात की सारी सेवाएं बांट ले। रात में मैं सेवा करूंगी, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये कोई छत्र कोई धारण करना, कोई और सब कोई पद संवाहन लक्ष्मण करेगा, सब सेवा बांट लिया और हनुमान के लिए कुछ नहीं रखा। हनुमान जी बड़े दुखी हुए, इनके चरणों में गिड़ गिड़ाए, मैं बिना सेवा का था मर जाऊंगा, हमारे लिए कुछ भी तो सेवा रखो। कहने नहीं तुम्हारे लिए कोई सेवा नहीं, बहुत दिनों तक बहुत तुमने सेवा की, अब आराम करो। कहने थे बड़ी मन, अच्छा एक बात करो, तुम हमको एक सेवा ये दो, कभी भी राम को यदि जम भाई आई तो मैं चुटकी जरा बजा दिया कर। कहा भगवान को तो कभी, राम को तो कभी जम भाई आती नहीं। अच्छा तो ठीक है, ऐसा ही करो, जब उनको जम भाई होगी तो तुम चुटकी बजा दे, ठीक है। वो दरवाजे के बाहर में, घर में घुसने नहीं दिया, बाहर में दरवाजे में वो खड़े हो गए और यहीं रह करके चुटकी बजाए और राम को जम भाई आने लगी। खाना पीना सब कुछ भूल गया, सब सेवा भूल गया और वो जम भाई ले रहे। उन्होंने कहा जी आप जम भाई तुम चुटकी क्यों बजाता है, तो हमको तो भीतर जाने नहीं देते, तो कब ना जाने उनको जम भाई आ गई आ जाए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। फिर सब लोगों ने जाकर के उनसे निहोरा किया और उनको भी सेवा में अधिकार दिया, तो फिर जाकर के ऐसे सेवा परायण ये हनुमान जी है। राम को जबकि शक्ति लगी संजीवनी बूटी लक्ष्मण के लिए, कौन लाया, हनुमान जी लाया। जिस समय मेघनाथ ने राम और लक्ष्मण दोनों को नागपाश से बांध दिया, उस समय दोनों मूर्छित हो गए और यदि वो सवेरा होते 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 बच नहीं जाएंगे तो तपन जाएंगे, मरेंगे तो नहीं किंतु ये दिखला रहे हैं ये लीला। हनुमान जी को देखा जो लोगों में वहां नहीं है, तो हनुमान जी कहाँ गए? गरुड़ जी के पास में, और उनको लेकर के आए। और रात होने के पहले गरुड़ जी आते ही नागपाश दूर हो गया। कितनी उन्होंने सेवा की है, इसलिए इनको कहते हैं प्रेमी भक्त। अब हनुमान जी सेवा तो करना चाहते हैं, किंतु थोड़ी सी एक बाधा है उनकी सेवा। ऐश्वर्य भाव एक होता है, ऐश्वर्य भाव एक होता है माधुर्य भाव भक्ति में। ऐश्वर्य भाव नृसिंह जी का रूप जो है ऐश्वर्य भाव। राम को ये जानते हैं ये परमेश्वर हैं, सेवा तो करते हैं, अपना जूठा खिला सकते हैं राम को। यदि कोई फल बहुत मीठा निकला तो अपने खा रहे हैं, कृष्ण को खिलाएंगे नहीं। खेल में खेल हो रही है कोई, और उसमें भगवान राम क्या पराजित होकर के उनको अपने कंधे पर, हनुमान जी उनके कंधे पर उठ करके बैठ सकते हैं? इसलिए ऐश्वर्य भाव के कारण उनकी इच्छा रहने पर भी उनके पलंग पर बैठ करके उनको पदसंभाग नहीं कर सकते। बहुत सी बाधाएं हैं। ब्रज के सखा लोग, कृष्ण यदि पलंग पर सोए हैं, गैया बन जा रही है चराने के लिए, तो वो उनके पलंग पर उठ करके अरे सारे क्या कर रहा, उठा लेंगे जोर से। और कोई मीठी चीज अच्छी चीज मिली तो अपने मुख में खा रहे हैं, उसे भी निकाल करके कृष्ण के मुख में दे देंगे। ये माधुर्य भाव है। ऐश्वर्य भाव की अपेक्षा माधुर्य भाव श्रेष्ठ है। ऐसे ही भगवान के प्रति ऐश्वर्य भाव की अपेक्षा माधुर्य भाव, भगवान मेरे पुत्र हैं, भगवान मेरे सखा हैं, भगवान मेरे प्रियतम हैं, ऐसा भाव श्रेष्ठ है। अब चलिए आगे। पांडव ये प्रेम पर भक्त है, ये हनुमान जी से भी श्रेष्ठ हैं। कैसे भक्त हैं? कृष्ण और अर्जुन एक थाल में खा रहे हैं, एक थाल में खाते हैं परस्पर, हनुमान जी नहीं कर सकते, एक थाल में खाएंगे। एक समय नारद जी भक्तों को दर्शन करने के लिए, सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है, तो शंकर जी के परामर्श से इंद्रप्रस्थ गए, और वहां पर उन्होंने देखा एक पलंग है, एक तरफ में कृष्ण अपना सिर देकर के सोए हुए हैं, और उनके ऊपर से इनका पैर, अर्जुन का पैर उनके वस्त्रक्षल से जा रहा है, और उसको उधर में रुक्मिणी सत्यभामा पलोट रही, और इधर कृष्ण का पैर उनके छाती से जो होकर के गुजर रहा है, उसको द्रौपदी और सुभद्रा जी उसको चाप रहे, और अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण 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 कितने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं। कृष्ण ने अपनी बहन की शादी इनसे की, अर्जुन से की, और अपने शाले बन गए, इनके रथ के घोड़ों को धोते हैं। आज जो अर्जुन कहते हैं वो रथ यहां ले चलो ऐसे ले चलो, वो हांकते हैं और उनकी रक्षा करते हैं सब प्रकार। यही नहीं, अपने राम रूप के जो परिकर हनुमान जी हैं उनको भी इनकी सेवा करने का आदेश दिया। कैसे? एक समय कहीं हनुमान जी मिले अर्जुन से, अर्जुन ने कहा जे तुम कह रहे हो जे राम तो बड़े शक्तिशाली थे, वो मेरे समान शक्तिशाली वीर नहीं थे। बंदरों से पुल बंधवाया और कितने दिन लग गए, मैं तो एक क्षण के अंदर में ऐसा पुल बांध देता जिससे सारी सेनाएं पार हो जाती बाणों से। तुम नहीं जानते, हनुमान जी ने कहा, मेरे एक पैर का भी भार तुम्हारा बाणों का पुल नहीं सह सकता। परीक्षा कर लीजिए। तो वहां पर नदी थी जमुना, जमुना के ऊपर में बाण से पुल बनाया ऐसा मजबूत जो हनुमान जी को भय लग गया। जे ये पुल हमारा भार संभालेगा, ये तो बहुत मजबूत बनाया, अर्जुन भी तो कम नहीं है, नर नारायण है। पुल बंद गया तो हनुमान जी को जब कुछ ऐसा हुआ तो वो उड़ करके चले गए हिमालय में, बड़ा विशाल रूप बनाया और रोम रोम में पत्थरों को बांधा और बड़े बड़े पहाड़ों को उठा करके और सबके साथ में वहां पर उपस्थित हुए। अब अर्जुन का भी हृदय धक धक करने लगा और इधर में वो भी सोच रहे हैं कि यदि पुल नहीं टूटा तो दोनों अपने अपने इष्ट देव को, वो अपने राम को और ये कृष्ण को पुकारने लग गए, प्रभु लज्जा रखना। हनुमान जी ने पहला पैर दिया किंतु पुल टस से मस नहीं हुआ और जहीं ये पैर हटा करके उठा करके उस पर देने वाले थे, इतने में नीचे से रक्त की धारा बह चली। उन्होंने देखा जी को, हनुमान ने देखा, अरे ये तो राम अपनी पीठ लगाए हुए हैं और अर्जुन ने क्या देखा, कृष्ण ने अपनी पीठ लगाई है। दोनों अपने इष्ट देव को देखा, हनुमान जी उतर गए। वहां पर कृष्ण बोले, ये देखो त्रेता युग में मैं ही राम था और मैं वही राम होकर के पांडवों की सेवा करता हूं, उनकी भक्ति से इतना प्रसन्न हूं, भक्ति से वशीभूत, इनके घोड़ों को धोता हूं, रथ चलाता हूं, तो तुम जब मैं ही सेवा कर रहा हूं तो तुम्हारा क्या कर्तव्य है, इनकी सेवा करना तुम्हारा भी कर्तव्य है, इसलिए एक बात करना, महाभारत के युद्ध में इनके ध्वजा पर तुम रहना, यदि कोई ऐसा बाण आया तो रथ को नीचे दबा देना और ऐसा गर्जन करना कि शत्रु का बाण ही इधर उधर हो जाए, इस प्रकार से सेवा करना। कैसे सेवा किया, ये सुभद्रा से विवाह कैसे किया। एक समय की बात है, अर्जुन तो कम नहीं थे, अच्छा एक तो कीर्तन कर दो, आपका पार्टी नहीं आया, अच्छा तैयार हो करके कल से आएंगे। बोलो
जय राधा
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
सुभद्रा जी कृष्ण और बलदेव जी की बहन थी। बलदेव जी चाहते थे ये अपनी प्यारी बहन की हम शादी दुर्योधन के साथ में करें। उनका शिष्य था वो, इसलिए उनकी चेष्टा थी ये अब शीघ्र ही अपनी बहन की शादी कर दूं दुर्योधन के साथ। कृष्ण, देवकी, वसुदेव और बाकी सब जितने यादव वंशी थे वो चाहते जी नहीं अर्जुन के साथ में इसकी शादी हुई, किंतु बलदेव के डर के मारे कोई कुछ प्रकट नहीं कर रहे थे, किंतु सभी की इच्छा यही थी कि अर्जुन के साथ में शादी। अर्जुन भी कृष्ण के समान ही परम सुंदर रमणीय थे। कृष्ण से उन्होंने कुछ परामर्श किया और त्रिदंडी साधु का वेश बनाकर द्वारकापुरी में गए और समुद्र के किनारे बैठकर और वहीं अपना भजन करने लगे। छप्पर फूस का छप्पर डाल लिया और उसके अंदर में रख करके भजन करने लगे। कृष्ण ने स्वयं प्रचार कर दिया ये बहुत बड़ा भारी सन्यासी यहां पर आया हुआ है, बड़ा तेजस्वी है और जो जाता है उसकी मनोकामना को पूर्ण कर देता है। फिर द्वारकावासी सभी लोग उनको दर्शन करने के लिए, बलदेव जी भी उनके दर्शन करने के लिए गए, पहचान नहीं सके। द्रौपदी इधर क्यों सुभद्रा जी भाइयों की इच्छा से वो भी साधु का दर्शन करके जिनकी शादी हो जाए जल्दी से वो भी वो साधु का दर्शन करने के लिए गई। जब साधु का जबकि वहां पर पहुंची उनके आश्रम में तो अर्जुन ने क्या किया, इशारा किया उनको और अपने रथ के ऊपर में खींच करके बैठा और रथ की बागडोर उनको दे दिया। सुभद्रा भी यही चाहती थी हमारी शादी दुर्योधन से न होकर के कृष्ण के अर्जुन के साथ में हो, इसलिए औरत को पकड़ ली और अर्जुन गांडीव धनुष लेकर के खड़े हो गए, जो कोई आएगा उनको हम समाप्त करके अपहरण करके इंद्रप्रस्थ जाने लग गए। बलदेव जी हल मुसल लेकर के उपस्थित हुए और सेनाओं की आज्ञा दी चारों तरफ से घेर लो, हमारी बहन का अपहरण ये तो हमारे जदवंशियों का अपमान कर रहा है, ये मैं नहीं जानता था ये अर्जुन है, ये तो अर्जुन है। तो जबकि लेकर के चले आक्रमण करने के लिए उनको मारने के लिए तो कृष्ण सामने आ गए, भैया कहां जा रहे हो, तो अपहरण कर रहा तुम देखने लिए तुम चुपचाप बैठे हो, तो अपहरण करना तो ये हमारे वंशियों का जदवंशियों का ये रीति है परंपरा है, हमने रुक्मिणी का हरण नहीं किया तो आप क्यों गए लड़ने के लिए। शाम को अपहरण कर लिया पांडवों ने दुर्योधन इत्यादि ने, आप क्यों गए उसकी रक्षा कराने के लिए। तो जैसे वीर अर्जुन है और अपहरण कर सकता है तो इसी के साथ में शादी करना अच्छा है, कहे तो पहले क्यों नहीं बतलाया हमसे, तो आपके डर के मारे कोई बोल सकता है इसलिए नहीं बतलाया। तो ऐसे अर्जुन भगवान के प्रिय हैं, पांडव लोग प्रिय हैं। द्रौपदी के लिए क्या किया नहीं कृष्ण ने, वस्त्र बन गए और उसकी रक्षा की। पांडवों पर जब जब भीड़ आई है तब तब उनकी रक्षा की। हजार उदाहरण महाभारत से भरा पड़ा है, भागवत से भरा पड़ा है। तो ये लोग इतने उच्च कोटि के भक्त हैं प्रेम पर है। कृष्ण की दिन रात कोई बहाना बना करके, युद्ध का भी बहाना बना करके किसी तरह से, और कृष्ण को अपने पास रखते हैं, और हस्तिनापुर में ही इंद्रप्रस्थ में ही कृष्ण रहते हैं, द्वारका में कम रहते हैं, अधिकांश यही रहते हैं, किंतु थोड़ी सी गड़बड़ी है इस सेवा में भी। सेवा तो पूर्व है, कृष्ण ही जिनकी सेवा करते हैं, उनके परिकर हनुमान इत्यादि उनकी सेवा करते हैं, ऐसे उच्च कोटि के भक्त हैं, किंतु जब कभी विराट रूप देखते हैं महाभारत में युद्ध में, विश्वरूप विराट रूप, जो उनके मुख में असंख्य विश्व ब्रह्मांड दांतों के तले दबाए हुए और सभी लोग मरे पड़े हैं, इसलिए अर्जुन को कहा कि अर्जुन देखो अपना कर्तव्य पूरा करो, मेरे आदेश को, असुरों को ध्वंस करके पृथ्वी की रक्षा करना है, भूभार हरण करना है, केवल ये तो मरे हुए हैं सभी, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य और सभी लोग मरे हुए हैं, केवल निमित्त मात्र बन जाओ। तो उस समय अर्जुन हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, जो मैंने जो आपको सखा कहा है, तुमको रथ के बीच में, सभा के बीच, युद्ध क्षेत्र के बीच में हमें ले चलो, हमारे घोड़ों को धोते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, हमारी सेवा करते हैं, इसलिए सखा जो शब्द कहा है ये गलत बनी है, आज से हमको क्षमा कर दीजिए, आपसे अब सखा नहीं कहूंगा, आप तो विश्व ब्रह्मांड का लय प्रलय करने वाले और करोड़ों विश्व ब्रह्मांडों को करने वाले प्रभु हैं। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, उनकी भक्ति भूल गई, वो प्रेम भूल गया, और उसको अपराध मान करके उसे क्षमा कराने के लिए प्रार्थना करने लगे, इसलिए इनके अंदर भी कुछ कुछ ऐश्वर्य का भाव है, ये कमी चीज है, इनसे भी अधिक ये प्रेम पर भक्त है, और इनसे अधिक भक्त उद्धव जी है, जो द्वंसी लोग, वो लोग प्रेमातुर, प्रेमातुर माने क्या, प्रेम में आतुर हो जाते हैं, प्रेम में पागल हो जाते हैं, और सब समय सेवाई वो लोग करते हैं, विशेष करके उद्धव। इस उद्धव के संबंध में कितने प्यारे भक्त हैं, हनुमान उनसे भी, पांडवों से भी, और जहां जहां अपने जाना होता प्रतिनिधि के रूप में उद्धव जी को भेजते हैं, ऐसी सेवा प्रदान करते हैं, इसलिए प्रेमातुर भक्ति इनको कहते हैं। इनके संबंध में हम कल बतलाएंगे, आज यही तक। नो 5 मिनट अबाउट भक्ति, व्हाट इज भक्ति, what is the definition of bhakti and something touching,
om jnane chvarandhasya jnanandana salakya chakshu unmilitam yena tasmai si first of all, I ask myself and Pushpanji thousands of times at the lotus feet of Asmadeya Paravaradhatam Vyupayamama Om Shupar Ashtotara Zatasisivar Dr. Dhamta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I ask my pranam thousands of times at the lotus feet of my Shri Rupani Gurgaudiya Guru Maharaj. And I ask my pranam to all the Sangot Anand Kitani Parivar, all the Vaishnavas and the Vaishnavis. Now we have a very great fortune to hear Srimad Bhagavat Katha from the lips of Bhakta Bhagavata, Bhakta Bhagavata, the devotee who himself, he is the complete embodiment of the message of Srimad Bhagavata. Srila Sutta Goswami Pad, in the beginning of Srimad Bhagavatam, explained Srinvatam Swakata Krishna Punya Srakana Kirtana Hridyantasto Hyabhadrani Vidhunoti Suritsatam. One should hear the message of Srimad Bhagavatam from the lips of a pure devotee. What will be the result of this? For those who are hearing Srimad Bhagavatam, Krishna is Surit Satam, their very dear friend. Why? Because if you have a friend and he comes to your house, if he sees your door is open, then he will not ring the bell, he will not knock, he will not wait. What will he do? He will go directly inside there. A stranger will stop and knock and ring and wait, but a friend go directly inside. So in the same way, when one hears Harikatha, Bhagavad Katha from Sadguru with Shraddha, with faith, then Krishna is like your friend, because he comes in the sound of Srimad Bhagavatam and sees, oh, the door is open, side door and another side door, two doors, and directly he goes in. If your friend goes to your house and sees your house is not so clean, everything is in a mess, no place to sit down even, books and magazines here and there on the chairs, then what will he do? Himself will move everything out of the way and clean. Any person who is not familiar with you, not your friend, he will come and he will stand until someone says, oh,